Asterisk the 16th of August Ishwar Bhi Part 2 Asterisk एक राजा था। उसके शशिकांत नाम का एक लड़का था। यकायक पुत्र होने के कारण राजा का अत्यधिक स्नेह उस पर था। अत्यधिक स्नेह के कारण राजकुमार शशिकांत पढ़ नहीं सका और उसका स्वभाव भी हठी बन गया। जिस हठ को पकड़ लेता उसे छोड़ता नहीं था और संगत भी अवारा दोस्तों की थी। जैसी संगत वैसी रंगत राजकुमार बड़ा हुआ। ब्याह सगाई की बातें चलने लगी मगर कंवर ने एक अनोखा हट झेला। ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण की कि मैं उस राजकुमारी के साथ विवाह करूंगा जो मेरे हाथों से प्रतिदिन 7 जूते खाएगी। राजकुमार की प्रतिज्ञा की बात जिस किसी ने सुनी वह राजकुमार के प्रति नफरत करने लगा। कोई भी ऐसी शर्त पर अपनी लड़की देने को तैयार नहीं। पड़ोस में एक दूसरा राजा राज्य करता था। उसकी पुत्री कनकप्रभा रूप में अप्सरा को भी मात देती थी और बुद्धि में सरस्वती से कम नहीं थी। कनकप्रभा ने राजकुमार की प्रतिज्ञा सुनी। वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई वार्तालाप कर रही थी। उसकी सहेली ने राजकुमार की शर्त वाली बात कही। तब राजकुमारी ने कनकप्रभा से कहा, विलक्षण प्रतिभा की धनी व चतुर तो तुम ही हो। यदि तुम्हारा विवाह उस राजकुमार के साथ हो जाए तो तुम अपनी प्रतिभा से उन्हें अपने अधीन कर सकती हो। हम भी देखे तुम जूतों की मार से कैसे बचती हो। कनकप्रभा राजकुमारी को सहेलियों का ताना चुभ गया। उसने मन ही मन यह प्रतिज्ञा ग्रहण की कि यदि मैं विवाह करूंगी तो उसी राजकुमार के साथ करूंगी और अपनी प्रतिभा से राजकुमार को बता दूंगी कि नारी नारायणी है। मैं भी देखूंगी कि वह राजकुमार किस प्रकार जूते मारता है। राजकुमारी ने सहेलियों के माध्यम से अपनी प्रतिज्ञा की बात पिता के पास पहुंचा दी। कनकप्रभा की प्रतिज्ञा को सुनकर पिता एक क्षण विस्मृत हुआ, फिर अपनी पुत्री को समझाने को प्रयास किया। राजकुमारी बोली, पिताजी प्रतिदिन तो क्या एक दिन भी मुझे जूते नहीं मार सकते। अंत में पिता ने राजकुमार शशिकांत के पिता को सूचना भिजवा दी। शशिकांत के पिता ने जब यह बात सुनी तो वो हर्ष से झूम उठे। उन्हें स्वप्न में भी आशा नहीं थी उसके बुद्ध व हठाग्रही पुत्र से कोई राजकुमारी शादी करेगी। उसने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। हर्षोल्लास के क्षणों में विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ। ज्यों ही बारात पहुंची त्यों ही राजकुमार शशिकांत कनकप्रभा के पास पहुंचा और बोला, मेरी प्रतिज्ञा है इसलिए मैं सर्वप्रथम तुम्हें जूता मारूंगा। जूता निकालने को हुए तो मधुर मुस्कान बिखेरती हुई कनकप्रभा ने कहा, आर्य पुत्र अभी तो विवाह विधि पूर्ण नहीं हुई है और जब तक विवाह की विधि पूर्ण नहीं होती तब तक आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। राजकुमार बिना कुछ बोले उल्टे पैरों लौट गया। भावरे फेरे फिरी और विवाह की विधि जब पूर्ण हो गई तब शशिकांत ने हाथ में जूता लेकर कनकप्रभा से कहा, अब मैं जूता मारूंगा। कनकप्रभा ने कहा, आर्य पुत्र अभी मैं अपने पिता के घर पर हूँ, जब तक ससुर गृह में नहीं पहुँचती तब तक आपको जूते मारने का कोई अधिकार नहीं है। राजकुमार मौन होकर बैठ गया। बारात घर पर पहुंची और ज्यों ही वो अपने कक्ष में पहुंचा त्यों ही उसने जूते मारने की बात कही और मारने को जूता उठाया तो कनकप्रभा ने हाथ पकड़ लिया और बोली, आर्य पुत्र अभी तक आप अपने पिता की अर्जित कमाई खा रहे हैं, जब आप अपने पुरुषार्थ से धन कमाएंगे और मेरा भरण पोषण करेंगे तभी तो भर्ता की संज्ञा से सुशोभित होंगे। जब तक आप भरण पोषण नहीं करेंगे तब तक जूता किस प्रकार मार सकेंगे। पहले कमाकर खिलाओ फिर बेशक जूता मारना। राजकुमार शशिकांत को अपनी पत्नी कनकप्रभा की बात चुभ गई और उसने हट पकड़ लिया, कमाने विदेश जाऊंगा। माता पिता ने खूब समझाया और रोकने की भी कोशिश की पर वो व्यापार हेतु चल पड़ा। जाते समय माँ बाप ने बहुत से बहुमूल्य रत्न आदि दिए। घोड़े पर बैठकर चल पड़ा एक अनजान राहों पर। राजकुमार चलता हुआ एक ठगों के गांव पहुंचा। ठगों ने देखा इसके पास अपार संपत्ति है, मालदार आदमी है, इससे यह संपत्ति छीननी चाहिए। उन्होंने राजकुमार के पास दौड़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोले, चुपके चुपके आप कैसे आगे जा रहे हैं? हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। आपके पिताजी का हम पर बहुत उपकार है। आप बाप का दिया ही खाते हैं। राजकुमार उनकी चीकनी चुपड़ी बातों में आ गया। ठग राजकुमार को घर लाए, भव्य स्वागत किया और बढ़िया से बढ़िया भोजन कराया तथा राजकुमार को कहा, आज रात्रि में यहाँ पर विश्राम करें। राजकुमार जब गहरी नींद में सो गया तब एक रत्न जड़ित आभूषण उसके सामान में रख दिया। प्रातः होने पर उस ठग ने कहा कि मेरा रत्न जड़ित आभूषण रात को कोई चुरा कर ले गया है। ठग ने सहज भोले बनकर राजकुमार से पूछा, क्या आपने मेरा आभूषण देखा है? राजकुमार ने कहा, नहीं। बात ने विवाद का रूप ले लिया। अन्य ठग भी एकत्रित हो गए। दूसरे ठग ने कहा, इस अतिथि की तलाशी ली जाए। तलाशी लेने पर वो रत्नजड़ित आभूषण राजकुमार के सामान में से निकला। यह चोर है, इसने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए इसकी सारी संपत्ति छीन ली और फटे कपड़े पहनाकर गांव से बाहर निकाल दिया। राजकुमार दर दर का भिखारी बन गया। जंगल में से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर अपना भरण पोषण करने लगा। सोचता, अब घर कैसे जाऊंगा, कैसे उसे जूते मारूंगा। घंटों बैठकर रोता रहा। कनकप्रभा ने राजकुमार शिष्यकांत के पीछे अपने पीहर का एक आदमी गुप्तचर के रूप में भेज दिया था। उस गुप्तचर ने कनकप्रभा को सारी बात आकर बताई। कनकप्रभा ने पीहर जाने का नाम लेकर वहां से चली गई। कनकप्रभा ने पुरुष का वेश धारण किया और वो उस गुप्तचर के साथ उसी ठगों के गांव में पहुंची। ठगों का यही धंधा था आने जाने वालों को ठगना। ठग आया, घोड़े की लगाम पकड़ी, बहुत मान सम्मान से स्वागत किया, बढ़िया भोजन कराया, रात्रि विश्राम हेतु उसी ठग के यहाँ रही। रात्रि में ठग ने वह रत्न जड़ित आभूषण उसके वस्त्रों में डालना चाहा पर वह जागरूक थी, अतः जो ही वह रत्न जड़ित आभूषण रखा त्यों ही उसने निकाल कर ठग के वस्त्रों में ही छिपा दिया। प्रातः होने पर ठग ने कहा, मेरा रत्न जड़ित आभूषण चुराया गया है। यदि इस अतिथि के सामान में निकलेगा तो इसके सारे सामान के अधिकारी हम होंगे। यदि नहीं निकला तो हमारे घर के सारे सामान का अधिकारी यह होगा। कनकप्रभा जो पुरुष वेश में थी उसने कहा, मुझे मंजूर है। फैसले की लिखा पढ़ी की गई और जब तलाशी ली गई तो कनकप्रभा के सामान में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, पर वो रत्नजड़ित आभूषण उसी ठग के सामान में मिला। लिखा पढ़ी होने के कारण सारा सामान कनकप्रभा को प्राप्त हो गया। उस सामान में अपने पति के बहुमूल्य रत्न आदि भी थे। कनकप्रभा ने उस गांव के समीप ही एक मकान किराए पर लिया और सदाव्रत भोजनशाला खोल दिया। सदाव्रत में अनेक व्यक्ति भोजन करने के लिए पहुंचने लगे। मुफ्त का भोजन था, अतः अनेक व्यक्ति आते खुद मकान के ऊपर झरोखे में बैठ जाती और आने वालों को देखती। कुछ दिनों के पश्चात फतेहाल कुंवर शिष्यकांत भी भोजन करने के लिए पहुंचा। उसके पास एक कुल्हाड़ी थी। पुरुष वेशधारी राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया। कनकप्रभा ने आज्ञा दी, इस व्यक्ति को ऊपर भेजो। राजकुमार ऊपर आया, नमस्कार किया। कनकप्रभा बोली, नौकरी करोगे? हाँ। क्या तनख्वाह लोगे? राजकुमार को पहनने का कपड़ा, पेट भरने के लिए भोजन। कनकप्रभा, ठीक है। पहले प्यार से भोजन करवाया, फिर उसके फटे कपड़े उतरवाए, स्नान आदि करवा कर दूसरे नए कपड़े दिए। कुल्हाड़ी और पुराने वस्त्र उसने अपने पास संभाल कर रख लिए। कुछ दिनों तक वहां रही, फिर अपनी दुकान समेटी। राजकुमार को सारा माल जो ठगों से प्राप्त किया था सब माल हीरे जवाहरात दे दिए और साथ खूब पुरस्कार दिया। फिर आज्ञा दी, एक हफ्ते में यह मकान खाली करके अपने घर चले जाना। स्वयं कनकप्रभा वहां से चल पड़ी। मार्ग में पुरुष वेश उतार कर स्त्री का वेश पहन लिया और पालकी में बैठकर ससुराल चली आई। राजकुमार भी बहुत सारी संपत्ति को पाकर फूला न समाया। वो सोचने लगा, अब मैं शीघ्र ही घर जाऊंगा और पत्नी को जूते मारूंगा। देखें अब क्या कहकर इनकार करेगी। राजकुमार के पहले कंकप्रभा घर पहुंच गई थी। राजकुमार धीरे धीरे चलकर अपने नगर में पहुंचा। पत्नी को जूते मारने को इतना आतुर था कि अपने माता पिता से भी नहीं मिला। सीधा अपने शयन कक्ष में पहुंचा और बोला, ले अब क्या कहती है। कंकप्रभा ने मधुर मुस्कान के साथ अपने पति का भावभीना स्वागत किया। राजकुमार शशिकांत ने अपनी पत्नी से कहा, अब तू जूते खाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं विराट संपत्ति कमा कर लाया हूँ। कंकप्रभा ने कहा, क्या आप वस्तुतः कमा कर लाए हैं? आप इतना रौब जमा रहे हैं? पहले सोचिए, ठगों ने किसको लूटा था? कौन जंगलों से लकड़ियां काट कर अपना पेट भरता था? फटे पुराने चिथड़े पहनकर कौन गुजारा करता था? इसने आपको पुरस्कार दिया? हाँ, इतना कहकर उसने एक पेटी खोलकर राजकुमार के आगे बढ़ा दी और बोली, बतलाइए ये कुल्हाड़ी और फटे पुराने कपड़े किसके हैं? पहले अपनी यह कमाई पहचान लो, फिर जूते मारने की मेहरबानी करना। अपना सामान, कुल्हाड़ी, कपड़े देख उसकी आंखें लज्जा से नीचे झुक गई। वो राजकुमारी के चरणों में गिर पड़ा और सदा के लिए उसने जूते नहीं मारने की प्रतिज्ञा की। वो राजकुमारी की प्रतिभा से प्रभावित हुआ। आज यदि यह नहीं होती तो मुझे जीवन भर दीनहीन बनकर भटकना पड़ता। राजकुमारी ने अपनी प्रतिभा से राजकुमार को सही रास्ते पर लगा दिया और अध्ययन कराकर उसे भी विद्वान बना दिया। इन सब को सुनकर इंसान को जघन्य ओछे काम नहीं करना चाहिए। सभी के साथ सदाशयतापूर्ण व्यवहार हो। धर्म प्रभावना एस्टरिस्क बड़ी तपस्या में श्री संजीव जी जैन के 7, श्री संत कुमार जी जैन के 6, श्रीमती पल्लवी जी जैन के 6, तेला समता जी जैन, बेला हर्षित जी जैन, उपवास किरण जी जैन के है। द 17th ऑफ ऑगस्ट को प्रातः 9:30 बजे से गुड़ मंडी जैन स्थानक में जैन धार्मिक शिक्षण शिविर महिला एवं पुरुषों का लगेगा। आप सभी अवश्य लाभ लेवें। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत।